As a youth,
जब मैं युवक था, मैंने 1964 में न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड्स फेयर में घूमने गया। मेरा मनपसंद जगह था एलडीएस गिरजाघर का स्थान, जिसका सोलेक मंदिर के स्पायर्स का प्रतिरूप बहुत आकर्षक था। वहां पहली बार मैंने फिल्म मैसेज फॉर हैप्पीनेस को देखा था। उसमें एल्डर रिचर्ड एलन ने बनाया था को मुझ पर और आए हुए लोगों पर बहुत असर डाला। अन्य बातों के अलावा एल्डर एवर्स ने कहा था, जीवन तुम्हें दो बहुत बहुमूल्य उपहार देता है, एक तो है समय, दूसरा चुनने की स्वतंत्रता कि तुम अपने समय से वो करो जो तुम चाहते हो। तुम खुद अपना समय रोमांचक कार्यों के लिए बदल सकते हो। तुम उसे कम मुआयना रखने वाले इच्छाओं के लिए बदल सकते हो। तुम इसे लालच में काम में ला सकते हो। चुनने की स्वतंत्रता तुम्हारी है, मगर ये कोई सावधाव नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें हमेशा का संतोष नहीं मिलता। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम्हारे मन मरणशील जीवन का सभी तो हिसाब दिया जाएगा, और वो इस जीवन में है कि तुम विश्वास के साथ चलो और सभी करो कि तुम अच्छा कार्य, बुरा, सही या गलत, खुशी के झेलना या मनोरंजन के बीच ठीक चुनाव करने के योग्य हो। परमेश्वर, एक भविष्यवक्ता ने कहा है, मनुष्य है कि उन्हें खुशहाली प्राप्त हो। ये बातें हमारे धरती के जीवन के विश्वसनीयता वास्तविकता बतलाता है कि वो समय और चुनाव का देखभाल है हमारे सृष्टिकार द्वारा। देखभाल शब्द दिया दिलाता है प्रभु के समर्पण करने का कानून, जिसका एक अतिरिक्त कार्य है, मगर उससे ज्यादा जीवन के ऊंचे कानून के बारे में बतलाता है। या और अभी समर्पित करने का मतलब है अलग करना या समर्पित करना किसी चीज को पवित्र कार्य के लिए, पवित्र, अलग। इस जीवन की सफलता आती है जब हम अपना जीवन समर्पित कर दें, यानी कि हमारा समय और चुनाव परमेश्वर के लक्ष्य के लिए। ऐसा करने से हम उसे मौका देते हैं हमें अपने सबसे अच्छे भाग्य तक पहुंचाने के लिए। मैं आपके साथ जीवन के पांच तत्व पर चर्चा करना चाहता हूँ। शुद्धता, काम, अपने शरीर का सम्मान, सेवा और सचपन। जैसे उद्धारकर्ता ने दिखलाया, समर्पित जीवन शुद्धता जीवन है, क्योंकि यीशु की ही इकलौता है जिसने पाप मुक्त जीवन बिताया। गहरा प्रेम से प्रभु हमें प्रोत्साहित करता है इन शब्दों से, संसार के सभी कानून में तुम पश्चाताप करो और मेरे पास आओ और मेरे नाम पर बपतिस्मा लो, जिससे तुम की पवित्र आत्मा के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। समर्पित का मतलब है पश्चाताप, सिद्धिपन, विरोध और वजाओ ढूंढना, खोद देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और उसकी जगह सुधारने की इच्छा और वो सब अपनाना जो प्रभु चाहते हैं। ये है वो जो राजा बेंजामिन ने कहा, स्वाभाविक प्रकृति का त्याग कर पवित्र आत्मा के आकर्षणों से प्रभावित होना और प्रभु मसीह के प्रेषित द्वारा संत बन जाना। एल्डर बी एच रॉबर्ट्स ने एक बार इस क्रिया को ऐसे समझाया, वो व्यक्ति जो ऐसा चलता है परमेश्वर के उज्याला और बुद्धि और शक्ति से, आखिरी में संगत में शक्ति से परमेश्वर के उस उज्याले और बुद्धि और शक्ति को अपना लेगा। उन चमकीले किरणों को एक दिव्य चेन में घूकर अपने आप को हमेशा के लिए परमेश्वर से और परमेश्वर को खुद से जोड़ लेगा। ये मसीह के गुप्त बातें, तू ही पिता मुझ में है और मैं तुझ में है। एक समर्पित जीवन सेवा का जीवन होता है। अपने जीवन को शुरुआत में यीशु अपने पिता के कामों में लगा था। परमेश्वर ही अपनी प्रशंसा होती है उसके अपने बच्चों को अमर करने और जीवन देने का कार्य द्वारा। हम में इच्छा उत्पन्न होती है उससे उसके कार्य में सहायता करने की। थॉमस कार्न के शब्दों में, सभी सच्चा काम पवित्र है। सभी सच्चे काम में अगर वो अपने हाथों का ईमानदार काम हो, कुछ दिव्यता है। ईमानदार काम किसी भी तरह का विश्व भर में स्वर्ग तक पहुंचता और वही समझता किया जाता है। परमेश्वर ने इस मरणशील जीवन को रचा है लगातार परिश्रम में लगे रहने के लिए। काम से हम जीवन को कायम रखते और उपजाऊ बनाते हैं। वो हमें मरणशील अवस्था के निराशाओं और कठिनाइयों को झेलने के योग्य बनाता है। एक समर्पित जीवन काम से भरा होता है। कभी कभी धैर्य जाता, कभी विनित, कभी अवसुकर किया जाता, मगर हमेशा ऐसे काम से जो बेहतर करता, रीति देता, स्वीकार करता, उद्यता सिखलाता, अच्छा करने की सोचता। कामकाज की प्रशंसा की बातें करने के बाद मुझे आराम पर भी कुछ अच्छा करना होगा। जैसे कि कड़ी मेहनत आराम को महत्वपूर्ण देता है। यह सब मनोरंजन प्रदान कर सकते हैं किसी के जीवन को। इसके साथ ये कहना जरूरी नहीं होगा कि आजकल जिसे मनोरंजन कहा जाता है वो अश्लील, अपमानजनक, हिंसापूर्ण, मन को सुन कर देने वाला और समय बर्बाद करने वाला होता है। जब मनोरंजन सद्गुण से भरी आदत बन जाता है वो समर्पित जीवन के लिए विनाशक करने वाला बन जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, तुम ये मत समझ बैठना कि जो बुरी बातें हैं वो परमेश्वर की है। मरणशील अनुभव का मुख्य लक्ष्य है कि हर एक आत्मा को एक शरीर प्राप्त होगा और वो मानव देह में नैतिक रूप से चुना सीखेगा। जो लोग समझते हैं कि तुम्हारे शरीर एक चक्रदार मौके का परिणाम है, वो परमेश्वर या किसी और के प्रति उत्तरते नहीं महसूस करेगा अपने शरीर के साथ ये उस पर कुछ करने के लिए। हम में से जिनके पास विशाल वास्तविकता का बनाया बयान है, मरणशील जीवन से पूर्व, मरणशील जीवन और मरणशील जीवन से अनंतता का को हालांकि अपनाना चाहिए कि हमारे पास परमेश्वर के प्रति एक जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने शरीर की रचना इतनी अच्छी तरह से की। पॉल के शब्दों में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देख द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इन सच्चाइयों को पिछले अप्रैल में महासम्मेलन में दिया प्रधान फ्रांसिस मोशन ने निर्देशन को अपनाते हुए जो था तैयारी आशीर्वाद लाते हैं। हम अपने शरीर को बर्बाद नहीं करेंगे जैसे गुणों से या कमजोर करना जैसे निचले पदार्थ से या अपवित्र करना जैसे उनके बीच यौन संयोग जो एक दूसरे के साथ शादी ना किए हो, क्योंकि वो हमारे आत्मा को अवजार है। पौल ने कहा, मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी अंतिम सेवा है। यीशु ने सिखलाया कि एक समर्पित जीवन सेवा का जीवन है। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखलाया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाला से। हमारे समय में कोई और इतनी अच्छी तरह से इस बात को दैनिक जीवन में अपनाता नहीं जैसे प्रेसिडेंट थॉमस सेसनसन ने किया। उसके काम इतने तेज हैं कि वो आत्मा की हाल की से भी फुसफुसाहट सुन लेती है जो किसी तक पहुंचने या सहायता देने की जरूरत बतलाता है। प्रेसिडेंट मॉनसन फिर ये बतलाता है, लेकिन मैंने अपने आजा और आजी एल्डर डेविड और लुसी विक्ट्री क्रिस्टोफरसन के जिंदगी में ऐसा समर्पण पाया। आज के ताकतवर आदमी थे और भेड़ों के बाल निकलाने में माहिर थे। जब बिजली से चलने वाली कैंची नहीं थी, वो अच्छा काम लेते थे। उसने कहा, एक दिन मैं 287 भेड़ों के बाल निकाले और 300 के निकाल सकता था, मगर भेड़े कम थे। 1990 में उसने 12,000 भेड़ों के बाल निकाले और 2,000 कमाए। एक समर्पित जीवन सच्चेपन का जीवन है। हम ये उस पति और पत्नी में देखते हैं। वर्षों पहले मेरी पहचान दो परिवार से हुई जो साथ में जुड़े हुए एक व्यवसायिक कारोबार को खत्म कर रहे थे। मुख्य मालिक थे दो पुरुष जो दोस्त थे और एक ही ईसाई दल में थे, ने ये कारोबार वर्षों पहले आरंभ किया था। उसमें से एक साथी ने एक चाल चाली अपने वकीलों के साथ मिलकर, जिससे वो अपने लिए काफी दान निकाल लेगा। कारोबार के खत्म होते समय जिसके द्वारा दूसरे साथी और उसके बातों को दान संबंधित टूटा होगा। दोनों दलों की एक सभा में एक बेटे ने इस अन्यपूर्ण बातों से शिकायत की और पहले साथ एक आग्रह कि वो अपने सम्मान और ईसाई विश्वास पर निवेदन किया। तुम जानते हो ये ठीक नहीं है, उसने कहा, तुम कैसे किसी का तरफ गलत फायदा उठा सकते हो, खासकर एक ही गिरजाघर के भाई से। पहले सही के वकील ने खड़ा उठर दिया, अरे बड़े हो जाओ, तुम कैसे इतने ऐसे बोल सकते हो। अच्छापन भोला नहीं कहलाता। भोलापन ये है कि हम परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। उद्धारकर्ता ने घोषणा की, मेरे पिता ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं क्रूस पर उठाया जाऊं, कि जिससे सब मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। जो कोई समर्पित जीवन जीता है किसी का गलत फायदा नहीं उठाएगा, मगर अगर जरूरत पड़े तो उसकी ओर दूसरा गाल भी देगा। और अगर कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे जामा भी देना। उधारकर्ता से सख्त दांत पखंडियों के लिए होते हैं। वो विश्वास को नष्ट करता है, जबकि सम्मान ऐसा वातावरण पैदा करता जिसमें विश्वास बड़ा होता है। एक समर्पित जीवन बहुत सुंदर होता है। उसका बल और शांति एक बहुत फलदार पेड़ की तरह होता है। हम भी अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में, कि जब वो प्रकट होगा तब हम भी उसी के सामने होंगे, क्योंकि हम उसका वास्तविक रूप देख सकेंगे, जिससे कि हमें ये आशा प्राप्त होगी।
That we may have this hope, I pray.
आइए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।